عزیز سامعین، آئیے ایک بار پھر ہم دعا کریں۔ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم نہایت عاجزی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کلام کے سمجھنے میں آپ ہماری مدد و رہنمائی فرمائیں، تاکہ ہم اس کو پورے طور پر عمل کر کے سیکھ کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکیں۔ دعا خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب تک ہم شاگردی کے متعلق، گواہی دینے کے متعلق کچھ باتیں کرتے رہی ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اسی سلسلے کو آگے رکھتے ہوئے، جاری رکھتے ہوئے ایک اور طرف مبذول کرواؤں، تاکہ ہم پورے طور پر جان سکیں کہ جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ کس نام میں ہے۔ جب آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں ابتدائی ابواب میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار تیسرے، چوتھے اور پانچویں باب کی جب آپ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے، تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے بار بار یہ لفظ خداوند یسوع ناصری کے نام سے، خداوند یسوع ناصری کے نام سے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ اقتباس یا آیات ہماری نظروں میں ہیں، چوتھے باب کی یہ بارہویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور ہیکل کی طرف جاتے ہوئے پترس اور یوحنا کو دیکھ کر ایک بھیک مانگنے والے نے آواز لگائی، اور پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نگاہ کی اور پتھر سے کہا کہ ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پترس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پترس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اسی طرح سے اور بھی باتوں میں آپ بار بار یہ دیکھیں گے۔ سو دا پاور از ان دا نیم آف جیسس، ناٹ ان آور ٹیکنیک، ناٹ ان آر انڈرسٹینڈنگ، ناٹ ان آر اون وزڈم، بٹ دا پاور از ان دا گاسپل، دا پاور از ان ہز نیم۔ ایک تو یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پاور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں ہے۔ رسول گواہی کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، خداوند کی وصیت کے مطابق، ہدایت کے مطابق یروشلم میں گواہی دینے کا کام جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس بھرپور طریقے کے ساتھ 3,000 کا مجمع، 5,000 کا مجمع، میگا چرچ اسٹیبلش ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ رجوع لا رہے ہیں اور خدا کے کلام میں توانائی اور تندرستی محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے اس پیغام کو قبول کر کے خداوند پہ اپنا اعتقاد اور اعتماد ظاہر کرتے ہیں۔ جب میں چوتھے باب کی 13 آیت تلاوت کروں تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب انہوں نے، یعنی یہودیوں نے، جو ابھی تک خداوند کی قوت اور طاقت سے اور اس کے نام کی قدرت سے پورے طور پر واقف نہیں، جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، تو تعجب کیا۔ پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ علمیت خداوند کے ساتھ رہنے سے آتی ہے، یونیورسٹی کالج سے ہی نہیں آتی، بلکہ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے سے علمیت آتی ہے۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ناواقف لوگ ہیں، اور ان کے ان پڑھ اور ناواقف ہونے پر تعجب کیا، لیکن اس بات پر کہ یہ خداوند کے ساتھ رہے ہیں جان گئے کہ ان کی دلیری کی جو فاؤنڈیشن ہے، ان کی دلیری کی جو بنیاد ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے۔ تو اگر آپ गवाही के काम में फिक्रमंदी महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं, ये अल्फाज हमारे लिए तकवियत का बायस बनने चाहिए कि हमारी तमाम तर नावाकफियत के बावजूद, हमारे अनपढ़ होने के बावजूद, हम खुदावंद के साथ साथ चलने की वजह से बिल्कुल कामयाब और पढ़े लिखे इंसानों की, हिकमत वाले इंसानों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। आप जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना को बहुत ही अजीब तरीके से धमकाया गया और उनको मारा पीटा गया और फिर उनसे कहा गया, ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो, क्या या खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। भाइयों और बहनों, ये अल्फाज हमारे दिलों में नक्श होने चाहिए, मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहें। कैसे हो सकता है कि हम ना कहें, ना बयान करें, गवाही ना दें? मुमकिन नहीं। कोई डराना धमकाना हमें इस काम से रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदावन ने हमें वसीयत की है, हदायत की है और कहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये काम हर हाल में जारी रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। एक बात जो आज मैं और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जब इसी रसूलों के अमाल की 5:17-21 आयत तक आप तलावत करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड जहन में रखें। पहले पतरस और यूहन्ना रसूल को गिरफ्तार किया, उनको डराया धमकाया गया और कहा कि खबरदार इस नाम से दोबारा मनाती मत करना, तालीम ना देना। वो इस डराने धमकाने को खातर में नहीं लाए और खुदावंद की दी हुई हदायत पर अमल करते रहे, इसके बावजूद कि हुक्मरानों ने सख्त तंबीह की कि ऐसा मत करना, लेकिन उन्होंने इंसानी इरादों को पूरा नहीं किया, इलाही इरादों को पूरा किया। फिर जो लीडर हैं उन्होंने सारे के सारे रसूलों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि देखा कि सारा जहान इनका शागिर्द बना चला जा रहा है और ये काम बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। बेशमार यहूदी ईमान लाकर मसीही ईमान में शरीक हो रहे हैं, तो उन्होंने सारे रसूलों को गिरफ्तार कर लिया। अब जरा इन आयात की तलावत सुनिएगा और इन पे गौर कीजिएगा। अमाल 5:17। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरके के थे, हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। ये दो रसूल नहीं, सारे के सारे रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। अब हवालात में तो डाल दिया, जेल में तो डाल दिया। अब देखिए 19वीं आयत में क्या लिखा है, मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। और ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। गौर फरमाइएगा कि सारे रसूलों को हवालात में बंद कर दिया। खुदा ने इलाही तरीके से अपने फरिश्ते को भेजा और बंद दरवाजे खुल गए और उनको जेल से रिहाई दी। और रिहाई देकर ये नहीं कहा ये नेक इंसानों, तुमने खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह की आवाज सुनी, लोगों को शागिर्द बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, इसके लिए तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े, नाजायज ताने सुनने पड़े, मारपीट से गुजरना पड़ा। अब तुम जेल में डाल दिए गए हो। देखो, खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें रिहाई दूं। और देखो, ये कूपन है, ये तुम सब एक एक ले लो। किसी बड़े होटल में जाकर, हॉलीडे में जाकर हमने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया। इलाही तरीके से तुम्हारे लिए वहां पर सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। लिहाजा जाओ और वीकडे पे जरा रिट्रीट मनाओ और खुशी करो, और ताकि तुम अपने दुखों से, अपने इस नजायज रवैये से कुछ आराम पाओ, और फिर बाद में देखेंगे कि क्या मंसूबा होता है। ये तालीम नहीं दी, ये नहीं कहा कि जाओ जाके आराम करो और जाके वहां पर कुछ इत्मीनान करो, बल्कि फौरन आजादी के बाद ये फरमा दिया कि उठो, जाओ, खड़े हो जाओ। गो स्टैंड एंड विटनेस। कितने अहम बात है कि हमें आजाद किया गया है, हमें कैद से आजादी दी है, अपने आराम करने के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए नहीं, बल्कि जेल से आजादी दी है ताकि वो काम जो खुदावंद ने आपके सुपुर्द किया है उसमें देर ना हो, उस काम में कोताही ना हो, उस काम में सुस्ती ना हो। और फरिश्ते ने यही कहा कि देखो जाओ, और कहां जाओ, हैकल में जाओ, खड़े होकर। खड़े होने से मुराद खुसूसी लफ्ज हैं, इससे मुराद है स्टैंड फर्म ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट, स्टैंड फर्म ऑन द फेथ दैट यू हैव इन जीसस क्राइस्ट। उस पे खड़े होकर जिस जिंदगी की सारी बातें लोगों को सुनाओ। तो शागिर्दों ने रिहाई पाते ही किसी किस्म का गिला नहीं किया, पिटी पार्टी नहीं का एहतमाम नहीं किया, बल्कि उसी जोश और जज्बे के साथ वही जॉब डिस्क्रिप्शन जो फरिश्ते ने उनको दी थी उसको लेकर सुबह होते ही हैकल में गए, और उन्होंने लोगों के सामने इस जिंदगी की सारी बातों को सुनाने का अमल जारी रखा। क्या ये हदायत मेरे और आपके लिए नहीं? अगर हम मुश्किल से गुजरे हैं, दुखों से गुजरे हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपने काम को रोक दें और आराम करें। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, चाहे हमारे हालात कुछ भी हों। तो मैं आपके लिए फरिश्ते का यही पैगाम दोहराना चाहता हूँ, जाओ, हैकल में जाओ, बाजारों में जाओ, मोड़ों पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, ऑफिस में जाओ, जो काम खुदा ने आपको दिया है अपने अपने कामों पे जाओ, कारोबार में जाओ, और फर्मली खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को, इस जिंदगी की सारी बातों को लोगों के सामने बयान करो, क्योंकि यही हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आइए हम खुदा से दुआ करें कि वो हमें हिम्मत और हौसला दे ताकि हम इस काम को जारी रख सकें। आमीन।